जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhagiri Nari, Radhagiri Nari, Radhagiri Nari Radhe. Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Jaya Shobhaya. Goranitai Jaya Goranitai, Goranitai Jaya Goranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. हरि बोल हरि बोलता श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंध 9 अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 28 अब तक परशुराम जी की कथा चल रही थी, आज से यह कथा समाप्त होकर एक नई कथा प्रारंभ होने जा रही है। गाधिर भून महातेजा समेद्व इव पावकः तपसा शास्त्रमुत्सूज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम् गाधिर्भुन् महातेजा समेद्व इव पावकः तपसा शास्त्रमृत्युज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम् गाधिर्भुन् महातेजा समेद्व इव पावकः तपसा शास्त्रमुत्सूज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम् गाधे महाराज गाधी से अभूत उत्पन्न हुआ महातेजा अत्यंत तेजस्वी प्रज्वलित इव सदृश पावक अग्नि तपसा तपस्या से शात्रम क्षत्रिय पद उत्सृज्य त्याग कर यह जो लेभे प्राप्त किया ब्रह्म वर्चसम ब्राह्मण का गुण। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्ति विलान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार से है, महाराज गाधी पुत्र विश्वामित्र अग्नि की लपटों के समान शक्तिशाली था। वास्तव में ये हिंदी अनुवाद करने वाले ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। भागवत के श्रील प्रभुपाद जी के जो अनुवाद दिए गए हैं बिल्कुल पूर्ण है, लेकिन इस हिंदी के अनुवाद में अनेकों बार तुकार लगाया गया है। इसलिए भक्तों को भागवत पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी ऋषि मुनि महर्षि का नाम लिया जाए तो उसको आदर के साथ बोलना चाहिए। यहाँ पर सीधा लिखा है कि विश्वामित्र महान शक्तिशाली था, बहुत महान थे। था शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो वास्तव में यहाँ लिखा है विश्वामित्र महाशक्तिशाली था, परंतु था नहीं, थे। तो महाराज गाधी का पुत्र, फिर भी यहाँ और एक गड़बड़ है, महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी अग्नि की लपटों के समान शक्तिशाली थे। ये प्रभुपाद जी की मिस्टेक नहीं है, प्रभुपाद जी के अनुवाद का, प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य का अनुवाद करने वाले की मिस्टेक है। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र अग्नि के लपटों के समान शक्तिशाली थे। उन्होंने तपस्या द्वारा क्षत्रिय पद से तेजस्वी ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। तात्पर्य इस प्रकार से है, परशुराम का वृतांत बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी विश्वामित्र की कथा प्रारंभ करते हैं। परशुराम के इतिहास से पता चलता है कि यद्यपि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु परिस्थितिवश उन्हें क्षत्रिय के रूप में कार्य करना पड़ा। क्षत्रिय का कार्य पूरा कर लेने के बाद वे पुनः ब्राह्मण बन गए और महेंद्र पर्वत लौट गए। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यद्यपि विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु तपस्या के द्वारा उन्होंने ब्राह्मण पद प्राप्त किया था। इन इतिहास से शास्त्रों के इन कथनों की पुष्टि होती है कि वांछित गुण अर्जित करके ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है और क्षत्रिय ब्राह्मण तथा वैश्य बन सकता है और वैश्य ब्राह्मण बन सकता है। किसी का पद उसके जन्म पर निर्भर नहीं करता। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि ने पुष्टि की है, यस्य लक्षणम प्रोक्तम उन्सो वर्णा व्यंजकम यदंत्य त्रापि दृश्येत तत्तेने विनिर्दिशेत। यदि किसी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र के लक्षण दिखे तो भले ही वह अन्य जाति में क्यों न पैदा हुआ हो, उसे उन लक्षणों के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। यह जानने के लिए कि कौन ब्राह्मण है और कौन क्षत्रिय है, मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार करना चाहिए। यदि सारे अयोग्य शूद्र तथा कथित ब्राह्मण तथा क्षत्रिय बन जाए तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाए। इस तरह अनेक त्रुटियां आ जाएगी और मानव समाज पशु बन जाएगा, जिससे सारे संसार में नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो प्रति दिवसीय होने वाले इस भागवत सत्र में समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है श्री राधा गिरिराज जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी और श्री प्रभुपाद जी के चरण कमलों में बैठकर श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवत कथा श्रवण करने का और कराने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। आज परम पवित्र दिन है क्योंकि आज के दिन तीन आचार्य का तिरोभाव प्रस्थापित हुआ था। रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरोभाव दिन है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव दिन है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का तिरोभाव दिन है। वास्तव में हृदय में यह भाव हो रहा था कि आज इतना बड़ा दिन है और इतने छोटे से वक्ता को बिठाया गया है। यदि कोई वरिष्ठ भक्त आज का प्रवचन करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब भक्तों की भक्ति का वर्धन होता, क्योंकि इतने महान आचार्यों का तिरोभाव दिन और इतना सुंदर श्लोक हमारे सामने उपस्थित है। तो संक्षिप्त में इतना ही समझे, रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे षड गोस्वामियों में से एक हैं। जैसे हमारे षड गोस्वामियों में एक चीज प्रधान देखी गई है और वो है वैराग्य, और उनमें भी रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य की चरम परम सीमा पर स्थित थे। अपने परिवार में एकमात्र लौते पुत्र, आप सब जानते हैं परिवार का एक वंशधर होता है तो उस पुत्र के प्रति पूरे परिवार की ही अच्छी दृष्टि होती है, और बहुत धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। परंतु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जिसका मन लग गया हो, फिर चाहे कितना हो धन हो, कितनी भी संपत्ति यश ऐश्वर्य क्यों न हो, एक बार भी यदि किसी का मन भगवान के चरणों में आ गया तो संसार की संपत्ति ही उसे मिट्टी का ढेर लगती है। देहम निजम भारवत, उसे यह देह भी एक भार के समान लगता है। और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई, नव योगेश्वर जी निमी महाराज से कहते हैं कैसे शुद्ध भक्तों के सामने कहा जाए कि आपको तीनों लोक की सारी संपत्ति प्रदान कर देंगे यदि एक सेकेंड के लिए भगवान का स्मरण छोड़ दो। परंतु भगवान का शुद्ध भक्त इन तीनों लोकों की संपत्ति को ठुकरा देगा परंतु भगवान का स्मरण एक पल के भी लिए भी नहीं ठुकरा पाएगा, भगवान को कभी छोड़ नहीं सकता है। तो रघुनाथ दास 16 वर्ष की उम्र के थे और उस समय उनका मन भगवान के चरणों में लग गया और अपने घर को छोड़कर भाग कर त्याग कर महाप्रभु के पास चले जाते थे। कथा आप सब जानते हैं, मात्र मैं एक याद करा रहा हूं कि आज इनका तिरुभाव दिन है, इसलिए एक स्मरण करा रहा हूं। इनके पिता ने इत्यादियों ने सोचा कि यदि हम इनका विवाह करा देंगे तो स्थित हो जाएंगे, और बात भी सत्य है। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि के प्रारंभ में ही सोचा, ब्रह्मा जी ने अनेक पुरुषों को उत्पन्न किया तो ये सारे पुरुष अपनी अपनी दिशा में भागने लगे, बहुत भागने लगे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इन सभी पुरुषों को वश में करने के लिए क्या करूं। तो सभी पुरुषों को वश में करने के लिए ब्रह्मा जी ने स्त्री का निर्माण कर दिया, और जैसे ही स्त्री का निर्माण हुआ और ये लोग स्त्री से शादी करने लगे, फिर ब्रह्मा जी को वश में रखने की जरूरत नहीं पड़ी, सब लोग स्त्री के वश में। गोस्वामी जी कहते हैं, आज का नर स्त्री के वश में कैसे हो जाता है, ये बात कागभूषणी जी गरुड़ जी से कलयुग का वर्णन सुनाते हुए कहते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई। आज पुरुष नारी के वश में कैसे हो जाते हैं, कहते हैं नाचे नर मर कुट की नाई। जैसे एक बंदर किसी मदारी के वश में हो जाता है, वैसे ही आज का पुरुष नारी के वश में है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने के पिताजी ने सोचा कि इनका विवाह करा दूंगा तो ये टिक जाएगा, वश में हो जाएगा। बहुत धनी थे और ये भी दिखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए बहुत सुंदर कन्या के साथ इनका विवाह कराया गया। परंतु ये जिस दिन इनका विवाह हुआ उस दिन अपनी पत्नी के सामने दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति हूं, बस एक चीज मैं तुम चाहता हूं कि मैं चैतन्य महाप्रभु के शरणों में जाने की इच्छा रखता हूं। बार बार चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाने की इच्छा रखते थे, यहां तक कि रघुनाथ दास को लोहे की जंजीर से बांध कर रखते थे कि ये कहीं भाग न जाए। परंतु भक्तों, लोहे की जंजीर हो या सोने की जंजीर हो, सोने की जंजीर माने ये पत्नी का बंधन, पुत्र का बंधन, भगवान की भक्ति के सामने, उस वैराग्य के सामने संसार का कोई बंधन टिकता नहीं। अंत में रघुनाथ दास गोस्वामी चले ही गए। कहते हैं इंद्र जैसा ऐश्वर्य था और लक्ष्मी जैसी सुंदर इनकी पत्नी थी, परंतु तिलांजलि दे दी, ठुकरा दिए इस ऐश्वर्य को और इस स्त्री को, अपनी पत्नी को, और चले गए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। तो वक्त ये है रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य, और ये चैतन्य महाप्रभु के वहां किस प्रकार से सेवा करते थे। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के एक सेक्रेटरी थे जिसका नाम था स्वरूप दामोदर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के पर्सनल असिस्टेंट थे। तो इस प्रकार से ये निरंतर सेवा करने लगे, और महाप्रभु के जाने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन में रहकर अपना भजन भक्ति सिद्ध करने लगे। तो यह संक्षिप्त में रघुनाथ दास गोस्वामी की झांकी। इसी के साथ साथ आज रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भी तिरुभाव दिन है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक हैं, और चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा लेकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन गए, और वृंदावन में जाकर इनका प्रमुख कार्य क्या था। कहते हैं वृंदावन में रहने वाले व्रजवासियों के घर पर जा जाकर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गाते रहते थे। वास्तव में ये भागवत जो है गाने के लिए बनाया गया है। कई बार कुछ लोग दोष निकालते हैं कि ये भागवत के वक्ता भागवत में गाते क्यों हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए कह दूं, ये भागवत गद्य नहीं है, भागवत पद्य है। यदि आप लोग पढ़े हो तो पढ़ने में जो भाषा होती है गुजराती हिंदी, उनमें दो विषय होते हैं, गद्य और पद्य है? एक पद्य विभाग होता है पाठ, और दूसरी कविता, पद्य विभाग होता है। ये भागवत सुखदेव गोस्वामी ने बोला नहीं है, ये भागवत सुखदेव गोस्वामी ने गाया है। हाँ, भागवत पंचम स्कंद थोड़ा सा गद्य में है,
परंतु पूरा भागवत सुखदेव गोस्वामी ने गाकर परीक्षित महाराज को सुनाया। तो भागवत ये गाने का विषय है। खैर हम लोग गाकर नहीं समझ सकते, इसलिए बीच बीच में बोलते रहते हैं, परंतु वास्तव में भागवत को गाना चाहिए। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इसके आचार्य हैं। चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा लेकर वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर लोगों के घर घर में उपस्थित होकर इन भागवत के श्लोकों को गाते रहते थे। और भागवत के श्लोकों को गाने से उनके हृदय में इतना भाव, इतना प्रेम उमड़ पड़ता था, उनका हृदय बिल्कुल द्रवीभूत हो जाता था और भागवत के श्लोकों को गाकर उनकी आंखों से अजस्त अविरत अश्रु धारा बहने लगती थी। आचार्यगण लिखते हैं कि भागवत हाथ में रखकर भागवत के श्लोकों को गाते थे, परंतु उस समय उनके आंखों के आंसू से पूरा भागवत भीग जाता था। भागवत में भागवत पूरा पानी से जर्जरित हो जाता था, भीग जाता था। ये था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भागवत के ऊपर परम प्रेम और परम भागवत के ऊपर पूर्ण स्वभाव। तो इस प्रकार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भागवत के ऊपर परम लगाव था। और इसी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्यों के द्वारा आज जो वृंदावन में राधा गोविंद देव जी हैं, इसी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्यों ने मिलकर राधा गोविंद जी के लिए बहुत सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण किया। तो इस प्रकार ऐसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का आज तिरुभाव दिन है और साथ ही साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भी आज तिरुभाव दिन है। आज सब लोग जानते हैं कि हमारे गौड़ीय परंपरा में सर्वप्रथम भगवद गीता को प्रायोरिटी दी जाती है। भगवद गीता को पढ़कर हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं और भगवद गीता को समझ लेने के बाद श्रीमद् भागवत को पढ़ा जाता है और श्रीमद् भागवत को पूर्ण रूप से समझने के बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ा जाता है। चैतन्य चरितामृत को श्रील प्रभुपाद जी ने पोस्ट ग्रेजुएट ग्रंथ कहा है। ऐसा दिव्य विशुद्ध सत्व में स्थित होकर विशुद्ध चैतन्य महाप्रभु की लीला को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपनी कलम से लिखा है। और इस चैतन्य चरितामृत को लिखने के लिए उनको आज्ञा देने वाले थे रघुनाथ दास गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, क्षमा कीजिए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कृष्णदास कविराज गोस्वामी आप चैतन्य चरितामृत लिखो, कन्विंस कि आप चैतन्य चरितामृत लिखो, लेकिन उस चैतन्य चरितामृत में एक बार भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इसलिए ये बात, इसलिए आप देखेंगे कि चैतन्य चरितामृत में लोकनाथ गोस्वामी का कोई जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दी थी मेरा नाम इसमें नहीं होना चाहिए। परंतु भगवान के भक्त नम्र होते हैं, ये कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि मैं प्रवचन करने के लिए बहुत बड़ा योग्य हूं या ग्रंथ लिखने के लिए मैं योग्य हो चुका हूं। हृदय में नम्रता के वश कविराज गोस्वामी के हृदय में था कि मेरे जैसा पापी ही ये चैतन्य चरितामृत कैसे लिख सकता है। उन्होंने चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में लिखा है, पूरी शेर कीट है ते मुई से लघिष्ट, कहते हैं मेरे जैसा एक कीड़ा, एक तुच्छ जीव चैतन्य चरितामृत को लिख नहीं सकता है। एक बार भी यदि कोई मेरा नाम पर ले ले तो वह व्यक्ति ही अनेकों पापों से युक्त हो जाएगा, तो मेरे जैसा पापी व्यक्ति इनको कैसे लिखे। उनके हृदय में बहुत संशय था, परंतु अपने संशय को लेकर वृंदावन में स्थित राधा दामोदर मंदिर में गए। श्री राधा दामोदर जी के सामने कविराज गोस्वामी ने प्रणाम किया, आंखों से अश्रु की धारा हो रही थी कि गुरुजन की आज्ञा है चैतन्य चरितामृत लिखो और मेरी कोई योग्यता नहीं है, प्रभु एक असमंजस में फंसा हूं, यदि चैतन्य चरितामृत लिखूं तो ये मेरी घृष्टता होगी और नहीं लिखूं तो गुरुजनों का अपराध होगा, हे प्रभु मैं क्या करूं। इस प्रकार से कहते हुए कविराज गोस्वामी ने राधा दामोदर के चरणों में प्रणाम किया और उसी समय राधा दामोदर जी के गले से एक हार माला निकली और कविराज गोस्वामी के गले में आ गई और कविराज गोस्वामी ने समझ लिया कि ये राधा दामोदर का मुझे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त हो गई। और राधा दामोदर जी के गले से ये हार माला क्या निकली, उन्होंने आदेश दे दिया कि यह चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखो। तो भक्तों कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की। अब इससे बड़ा इनका गुण क्या हो सकता है, इतना विशुद्ध ग्रंथ जिन्होंने लिखा है। तो ऐसे कविराज गोस्वामी का आज तिरुभाव दिन है, इन आचार्यों के चरणों में प्रणाम और प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपके अनुगत्य में रह सकें और जिस प्रकार से जिस भाव में आपने भगवान की भक्ति की है उस भाव में रहकर हम भी भगवान की भक्ति कर सकें। ऐसे तो इन भक्तों के बारे में बहुत कुछ अनेकों लीलाएं शास्त्र में पाई जाती हैं, परंतु समय के अभाव में यहीं पर मैं विराम करता हूँ और आज के भागवत के श्लोक के ऊपर हम प्रस्थान करते हैं। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के इस 16वें अध्याय में हम सुनते आए हैं, अनेक भक्तों के मुख से सुना। वास्तव में श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 88,000 ऋषि मुनियों ने भागवत कथा सुनी मात्र एक वक्ता से, हैं? और वो थे सुध गोस्वामी। परीक्षित महाराज ने भी भागवत सुना मात्र एक वक्ता से, सुखदेव गोस्वामी से। परंतु विचार कीजिए, हम लोग कितने धन्य हैं कि हम लोग उसी भागवत को सुन रहे हैं, लेकिन कितने वक्ताओं के मुख से। वही वह सुखदेव गोस्वामी के मुख से भी सुन रहे हैं, सुध गोस्वामी के मुख से भी सुन रहे हैं, सिद्ध स्वामी, चक्रवर्ती पाद, अनेकों आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से, और उसी के साथ साथ प्रभुपाद जी की लेखनी के माध्यम से, और प्रभुपाद जी के शिष्य प्रशिष्य के भाव को लेकर इन भागवत को पूर्ण रूप से हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ये हम सबका एक अद्वितीय सौभाग्य है, बहुत सुंदर सौभाग्य। तो गत सत्र में हमने सुना किस प्रकार से परशुराम जी ने माँ का गला उड़ा दिया, अपने भाइयों का गला काट दिया। लेकिन श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि परशुराम जी का यह चरित्र हम सब के लिए उपाध्याय है। वैसे परशुराम जी के जीवनी से यह उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिए कि माँ का गला काटो, भाई का गला काटो, लेकिन हाँ, परशुराम जी के जीवन से ये उपदेश तो अवश्य हमारे जीवन में ग्रहण कर सकते हैं कि यदि जाने अनजाने में या अज्ञान से हमारे द्वारा यदि कोई अपराध हो गया, यदि कोई पाप हो गया, तो उन अपराध और पाप से मुक्त होने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए या किसी पवित्र तीर्थ स्थान नदी में जाकर हमें स्नान करना चाहिए। यद्यपि भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं है, है ना। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे कर्म करने की, ये तीनों लोकों में कर्म करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु लोक विज्ञानार्थ, लोकों के आचरण के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार परशुराम जी ने लोगों को दिखाने के लिए, एक सीख देने के लिए कहते हैं, ततस्य अवभृत स्नान विद्युत अशेष किलबिष। परशुराम जी ने यज्ञ किए और पवित्र नदी में स्नान किया, और जैसे ही उस पवित्र नदी में स्नान किया, परशुराम जी का प्रभाव बढ़ गया। तो इस प्रकार से परशुराम जी तत्पश्चात स्वदेहम जब जम दग्नित्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम, और फिर परशुराम जी शांत होकर, सुखदेव गोस्वामी आगे की बात बताते हैं कि वे आगे चलकर सप्तर्षियों में से एक हो गए, जो हमने ये कथा परसों शास्त्र स्वरूप प्रभु के मुख से श्रवण की। अब उसके बाद दो तीन श्लोक हैं जिसका तात्पर्य नहीं है, और इसलिए मैं उस श्लोक के ऊपर कहूंगा, बाद में श्लोक पर आएंगे। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जमनग्न अपि भगवान राम कमल लोचन आगाम अनियंत राजन वर्तयिष्यति वै बृहत्। कहते हैं तत्पश्चात उसके बाद वाले मनवंतर में सप्तर्षि हुए, आस्ते अद्य अपि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये परशुराम जी आज भी उपस्थित हैं, वर्तमान में भी वो है, अद्य अपि आज भी वे यहां पर है। अद्य अपि माने आचार्यगण लिखते हैं, युग युग बीत जाने के बाद भी, अनेकों समय बीतने के बाद भी आज भी परशुराम जी उपस्थित हैं। तो प्रश्न हो सकता है, परशुराम जी कहाँ हैं? तो कहते हैं, आज से है, अद्य अपि आज भी परशुराम जी हैं। प्रश्न हो कहां पर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महेंद्र अद्रो, महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि महेंद्र पर्वत पे जाकर भी उत्पात मचा रहे हैं, जैसे पूर्व में उत्पात मचाया। उत्पाती जीव कहीं पर भी चला जाए वो उत्पात अवश्य मचाएगा। जैसे हिरण्यकश्यप के विषय में सुनते हैं कि हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, तो यहां तो वो दारू शराब पीता था, स्वर्ग में जाकर भी वो पीने लगा। तो क्या परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर जाकर भी उत्पात मचाते हैं? सुखदेव गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं, न्यस्त दंड प्रशांत थी, वो महेंद्र पर्वत पर जाकर बिल्कुल प्रशांत हो गए, प्रकृष्ट रूपेण शांत हो गए। दी उनकी बुद्धि जो थी बिल्कुल शांत हो गई, अत इसलिए उन्होंने न्यस्त दंड दंड देना न्यस्त छोड़ दिया। बुद्धि शांत होने से उन्होंने दूसरों को दंड देना छोड़ दिया। ये भी परशुराम जी का एक आचरण है जगत के लोगों के लिए। इस संसार में कोई व्यक्ति कितना भी अपराध करे, कितना भी पाप करे, जगत के लोगों को दंड देने वाले हम कौन होते हैं? कभी भी हमें किसी को भी दंड नहीं देना चाहिए। यह दंड देने का काम एकमात्र भगवान का है और भगवान के अंतर्गत यमराज जी का है। हमारा काम किसी को दंड देना नहीं है, मैंने उनको दंड दे दिया, हम कौन होते हैं? यदि हम किसी को दंड देते हैं तो हम भी कर्म बंधन में फंस जाते हैं। हाँ, यदि कोई व्यक्ति हमारे शरणों में पूर्ण रूप से शरणागत है, एक गुरु अपने शिष्य को और वैसे शिष्य को जो पूर्ण रूप से शरणागत हो उनको दंड दे सकते हैं, अन्यथा संसार में दूसरों को दंड देने वाले हम कौन होते हैं? तो लोगों के लिए एक आचरण करते हुए परशुराम जी ने दंड देना त्याग दिया और प्रशांत शांत होकर महेंद्र पर्वत पर चले गए। उपगीय मान चरित्र, और परशुराम जी के इस चरित्र को सिद्ध गंधर्व चारण, बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व और चारण परशुराम जी के चरित्र को युग युग से गा रहे हैं। यहां पर एक आचार्य ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है कि बोले बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व और चारण परशुराम जी के चरित्र को गा रहे हैं, और हम लोग भी कई दिनों से परशुराम जी के चरित्र को कथा के माध्यम से गा रहे हैं। तो भक्तों, एक सिद्धांत तो यह है कि हम जैसा सुनते हैं वैसा हम लोग बनते हैं, जैसा हम लोग सुनते हैं वैसा हमारा स्वभाव बनता है। तो एक आचार्य ने प्रश्न उठाया कि परशुराम जी ने मां का गला काटा, भाई का गला काटा, और ऐसी बात सुनकर हम भी यदि गला काटना शुरू कर देंगे तो ऐसे चरित्र को सुनने की क्या आवश्यकता है? परशुराम जी के चरित्र को क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि उन्हें तो मां का गला काटा, भाई का गला काटा, आचार्य ने प्रश्न उठाया। और यदि ऐसे चरित्र को सुनकर हमारे हृदय में भी विकार उत्पन्न हो जाए, तब उस आचार्य ने बहुत सुंदर बात बताई, उपगीय मान चरित्र। ध्यान रहे, परशुराम जी के जो चरित्र हैं संसार के साधारण जीवों की तरह तीन गुणों में बंधकर कर्म बंधन में फंसकर किए गए चरित्र नहीं है। परशुराम जी ने स्वच्छंद गति से स्वतंत्र रूप से लीला संपन्न की है, इसलिए परशुराम जी के द्वारा किए गए समस्त कर्म इस तीनों गुणों से परे हैं। आज कोई साधारण व्यक्ति अपने मां का गला काटे इस प्रकार का यह चरित्र नहीं है, यह त्रिगुणातीत तीनों गुणों से परे परशुराम जी का यह चरित्र है। और इस चरित्र को यदि हम सुनते हैं तो हम भी तीनों गुणों से परे हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं उपगीय मान तद चरितम। इसलिए परशुराम जी के चरित्र को सिद्ध गंधर्व और चारण गाते रहते हैं। परशुराम जी की लीला ही कुछ ऐसी है, समझ में आए या न आए, इस लीला को यदि सुन लेते हैं तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। अतः बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व और चारण इन लीलाओं को गाते रहते हैं। और फिर आगे एक श्लोक में परशुराम जी की महिमा बताते हुए कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कथा परशुराम जी के विषय में सुनी ना, तो कुछ लोगों को संशय हो सकता है, प्रश्न हो सकता है, इसलिए परशुराम जी के चरित्र को अंत करते हुए सुखदेव गोस्वामी अंतिम श्लोक कहते हैं, एवं भृगु विश्वात्मा भगवान हरि ईश्वर अवतीर्य परम भारम भुवो अहन बहुशो नृपान। कहते हैं कि एवं भृगुषु, इस प्रकार से भृगुवंश में जन्म लेने वाले परशुराम जी भगवान साक्षात भगवान थे। सुखदेव गोस्वामी अंत में कह रहे हैं जो भी हो जो कुछ भी हुआ हो लेकिन परशुराम जी साक्षात भगवान। भगवान की व्याख्या तो जानते ही हैं, षड़ ऐश्वर्य पूर्ण। और भगवान, और उस भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हरि, आचार्यों ने टीका में लिखा है हरि, हरि का अर्थ होता है भक्तों के दुख को हरने वाले। जो अपने भक्त के दुख को हरते हैं उन्हें हरि कहा जाता है। परशुराम जी का अवतार का मुख्य उद्देश्य अपने भक्तों के दुख को हरने के लिए हुआ था। परशुराम जी के अवतार का कारण भी श्लोक में बताया हरि। परशुराम के अवतार का कारण है हरि, भक्तों के दुख को हरने के लिए। और एक शब्द कहते हैं ईश्वर, भगवान हरि ईश्वर। और क्योंकि परशुराम जी अपने भक्तों के दुख को हरण करने में समर्थ हैं, सर्व समर्थ इति ईश्वर, ईश्वर का अर्थ ही होता है समर्थ, कंट्रोलर, नियंता। तो बाल प्रबोधिनी टीका में लिखा गया है कि ठीक है, परशुराम जी भगवान के अवतार हैं, इस पृथ्वी पर आए, लेकिन एक प्रश्न तो रह ही जाता है कि परशुराम जी ने ब्राह्मणों का पक्ष लिया और क्षत्रियों का विध्वंस किया। आपने सुना 21 बार इस जगत में रहने वाले समस्त क्षत्रियों को मारा, क्या दो पांच क्षत्रिय अच्छे नहीं होंगे? प्रश्न हो सकता है कि परशुराम जी ने ब्राह्मण का पक्ष लिया, क्षत्रियों का विध्वंस किया, और वही भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय, ये अर्जुन में सभी जीवों के प्रति सम हूं। रामायण में क्या कहते हैं, सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सबके ऊपर मेरा समान प्रेम। जब भगवान सम है तो ब्राह्मणों का पक्ष लिए और क्षत्रियों का विध्वंस क्यों किए? यदि ये प्रश्न हमारे हृदय में उठे है तो सुखदेव गोस्वामी इसके पूर्व श्लोक में कहते हैं है? कि एवं भृगुषु विश्वात्मा, परशुराम जी के लिए एक शब्द दिया गया है विश्वात्मा। परशुराम जी विश्व आत्मा, विश्व में रहने वाले समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, और परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, इसलिए परशुराम जी कभी भी ही विषम नहीं हो सकते हैं। हमारी बुद्धि से भले हम न समझ पाए लेकिन परशुराम जी विषम नहीं हो सकते हैं। यदि ये सिद्धांत में समझाने लगूंगा तो समय बीत जाएगा, श्लोक मुझे कहना है, परंतु इतना ही समझिए भगवान सम है, उस बात को हमें पूर्ण रूप से सिद्धांतों के द्वारा समझना होगा। तो इस प्रकार से परशुराम जी की कथा को समाप्त करके अब सुखदेव गोस्वामी आज एक नई कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं गादिर भूत महान तेजा, राजा गादी से अभूत उत्पन्न हुए, कौन? कहते हैं महान तेजस्वी पुत्र हुए, और पुत्र का नाम था विश्वामित्र। तो राजा गादी के एक महान पुत्र हुए जिसका नाम था विश्वामित्र। उस विश्वामित्र जी के प्रभाव के विषय में बताते हुए दृष्टांत दे रहे हैं, समिध्व इव पावक। समिधा का अर्थ होता है यज्ञ में जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, और उस लकड़ी को जब जलाया जाता है तो उससे प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। तो पावक अग्नि की समिधा के समान उस गाधी के पुत्र विश्वामित्र का प्रकाश था, तेज था, बहुत तेजस्वी थे विश्वामित्र जी। यद्यपि जन्म से वो क्षत्रिय थे परंतु लाइन में कहते हैं तपसा शास्त्रम उत्सृज्य, जन्म से वो क्षत्रिय थे लेकिन तपस्या के द्वारा इन्होंने क्षत्रियपन को त्याग दिया, तपस्या से क्षत्रियत्व को त्याग दिया। और यो लेवे ब्रह्म वर्चसम, लेवे माने प्राप्त किया, क्या? ब्रह्म तेज को प्राप्त किया। श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि किसी का जन्म किसी भी परिवार में क्यों न हुआ हो, साधना के द्वारा वह व्यक्ति अपने वर्ण को बदल सकता है। तो यहां पर क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ परंतु तपस्या के द्वारा इन्होंने ब्रह्म तेज प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की बहुत अद्भुत कथा है शास्त्र में, मैं एक घंटे से पढ़ रहा था लेकिन वो कथा एक आचार्य ने अपनी टीका में 2-3 पेज भरकर महाभारत और वाल्मीकि रामायण से कोटेशन लेकर लिखा है, इस श्लोक के संदर्भ में कि किस प्रकार विश्वामित्र जी ने अपने क्षत्रियत्व को त्यागा और ब्रह्म तेज को स्वीकार किया। सबसे पहले तो विश्वामित्र को एक भूत चढ़ गया कि मुझे क्षत्रियत्व को त्यागना है और ब्रह्मत्व को स्वीकार करना है। लेकिन ये विश्वामित्र को ब्राह्मण बनने की ये लालसा कहां से हुई, ब्राह्मण बनने की इच्छा कहां से उत्पन्न हुई? महाभारत में वर्णन है कि विश्वामित्र जी एक दिन की बात, वे राजा थे और अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर अनेकों देशों में विचरण करते, नदी पर्वत पहाड़ को पार करते करते वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारे और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में बहुत सुंदर जिज्ञासा हुई और वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया। और जिज्ञासा के बाद वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया। स्वागत करते हुए वशिष्ठ जी के पास कपिला नाम की एक गाय थी। गाय की अनेकों जाति होती हैं, लेकिन उनमें से श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ गाय है कपिला गाय। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, समय अभाव में इतना ही समझिए कि चतुरंगिणी सेना थी। तो हमारे मंदिर में प्रसाद होता है तो रविवार को संडे फीस्ट में रोटी सब्जी या पूरी सब्जी दाल भात बनता है, लेकिन इस साधु ने चतुरंगिणी सेना का भोजन कैसे करवाया जानते हैं? सबके पास पर्सनली गए और कहा कि आप क्या खाना चाहते हो? तो कहते हैं मुझे पनीर की सब्जी, पूरी, खीर, दाल भात। दूसरे के पास आप क्या खाना चाहते? मैं पाव भाजी। तीसरे के पास आप क्या खाना चाहते? मैं पिज्जा। चौथे के पास, वैसे चतुरंगिणी सेना के पास पर्सनली गए, क्या क्या खाना चाहते और सबके लिए अलग अलग प्लेट, सबके लिए अलग अलग प्लेट भोजन तैयार करवाया। ये शास्त्र में वर्णन, महाभारत में लिखा गया। और इस प्रभाव को देखकर राजा विश्वामित्र तो दंग रह गए हैं, बोले आज तक मेरे राज्य में भी अतिथि सत्कार ऐसा नहीं किया और इस साधु ने ऐसा सत्कार किया। बोले इसका कारण क्या है? तब इन्होंने कहा कपिला गाय हमारी समस्त इच्छा पूर्ण करती है और कपिला गाय के प्रभाव सभी लोगों के लिए भोजन अतिथि सत्कार की। अब ये राजा की बुद्धि बिगड़ी, राजा विश्वामित्र, विश्वामित्र राजा थे, क्षत्रिय थे, गादी के राजा की बुद्धि बिगड़ी और कहा कि ये गाय आप मुझे दे दो, इस गाय के बदले में मैं आपको लाखों गाय देने के लिए तैयार हूं, आपको तो मेरा सारा सैन्य दे दूं, धन संपत्ति दे दूं, लेकिन ये कपिला गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। तब राजा विश्वामित्र जबरदस्ती विश्वामित्र मुनि से उस कपिला गाय को चुरा कर लेकर चले गए। अब कपिला गाय को लेकर चले गए, लेकिन कपिला गाय उसके उस राजा के साथ रहना नहीं चाहती थी। कपिला गाय कैसे भी करके भागकर मुनि वशिष्ठ जी के पास आ गई और कहा कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? तब मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूं, न तो मुझे में कोई प्रभाव है न कोई शक्ति है, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूं? और वो तो राजा विश्वामित्र, शत्रुंजनी सेना है उनके पास। तब कपिला गाय समझ गई और कपिला गाय ने अपने रोम रोम से करोड़ों करोड़ों सैन्य को प्रकट कर दिया। और जब महर्षि विश्वामित्र जी अपनी सारी सेना को लेकर आए, राजा विश्वामित्र सेना को लेकर आए, तो गाय से उत्पन्न होने वाली जो सेना थी उन्होंने युद्ध किया और युद्ध के द्वारा सारी सेना का विध्वंस कर दिया। जब इनकी सारी सेना का विध्वंस हो गया, तब राजा विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, वो 100 पुत्र वहां पर उपस्थित हुए और उपस्थित होकर उस कपिला गाय के ऊपर प्रहार करने लगे। जैसे ही गाय के ऊपर प्रहार होने लगा, मुनि वशिष्ठ जी नहीं रह पाए और उस समय उन्होंने दिव्य मंत्र का उच्चारण किया और दिव्य मंत्र हुंकार करके उच्चारण करने से वो राजा विश्वामित्र के 100 पुत्र उसी स्थान पर जलकर भस्म हो गए। केवल 100 पुत्र ही नहीं, उनके हजारों हजारों रथ, सैन्य, घोड़े, ये सब कुछ जलकर भस्म हो गए मात्र एक मंत्र के प्रभाव से। और उस समय हैं। राजा विश्वामित्र के मुख से निकल पड़ा है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, दिक्चमय क्षत्रिय बलम अहो ब्रह्म बलम बलम, मेरे क्षत्रिय बल को धिक्कार है, मैंने इतनी इतनी इतना इतना प्रभाव सैन्य एकत्रित किया और आज मेरे करोड़ों करोड़ों सैन्य के सामने है। ये ब्राह्मण का एक मंत्र है, ब्राह्मण का एक छोटा सा मंत्र ने मेरी करोड़ों सेना का विध्वंस कर दिया है। इसलिए धिक्कार करने लगे, दिक्ष में क्षत्रिय बलम अहो ब्रह्म बलम बलम, इस ब्रह्म तेज के सामने, ब्रह्म बल के सामने मेरा क्षत्रिय बल कुछ नहीं है। एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वाणी शास्त्राणी हतानी में, अरे मात्र एक ब्रह्म दंड से, ब्राह्मण के एक छोटे से प्रभाव से मेरे सारे शस्त्र और सेना विध्वंस हो गई। उस समय से राजा विश्वामित्र के मन में हो गया कि इस ब्राह्मणत्व के सामने क्षत्रिय का बल कुछ है ही नहीं, और आज के बाद मैं मेरा सारा क्षत्रित्व छोड़कर ब्राह्मणत्व को प्राप्त करूंगा, और ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आवश्यकता है। देखिए यहां पर विशेष कहा गया कि तपसा शास्त्रम उत्सृज्य, विश्वामित्र जी ने बहुत तपस्या की। उनकी तपस्या के विषय में पुराणों में वर्णन है कि जब तपस्या करने गए, संक्षिप्त में मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, समय हो गया है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा कितनी तपस्या इन्होंने की। सर्वप्रथम क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए ये 1000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, और 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से इनके पास आए और आकर कहा कि तुम वैसे तो राजा थे लेकिन तुमने 1000 वर्ष तपस्या की, इसलिए मैं तुम्हें राजर्षि पद प्रदान करता हूं, राज ऋषि, मैं तुम्हें राज ऋषि बना देता हूं। तो इनके हृदय में प्रसन्नता तो ही, चलो मैं राज ऋषि बन गया, लेकिन इनको राज ऋषि नहीं बनना था, इनका लक्ष्य बहुत हायर था, इनको तो ब्रह्म तेज प्राप्त करना था, इनको ब्रह्मर्षि बनना था, राज ऋषि नहीं बनना था, ब्रह्मर्षि बनना था। तब इन्होंने सोचा कि अभी भी ब्रह्मा जी ने मुझे मात्र राज ऋषि बनाया है, ब्रह्मर्षि नहीं बनाया। तब फिर से 1000 वर्ष तक तपस्या करने लगे। क्षमा कीजिए, 1000 वर्ष पहले तपस्या की, अब 1000 वर्ष फिर से तपस्या किए, और जब ये 1000 वर्ष तपस्या किए तो आप सब जानते हैं अयोध्या का एक राजा था जिसका नाम था त्रिशंकु, इसकी भी एक सेपरेट विस्तार से कथा है। तो राजा त्रिशंकु सबसे पहले वशिष्ठ आदि के पास गए, लेकिन वहां पर उनका काम नहीं हुआ, इनकी इच्छा थी कि मैं स्वर्ग में जाऊं, लेकिन उन्होंने श्राप देकर इस राजा को शूद्र बना दिया। जब कोई इस राजा को हेल्प नहीं किया तब राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के पास आए और कहा कि प्रभु आप मुझे स्वर्ग में कैसे भी करके भेजिए। विश्वामित्र जी ही बेचारे राजा की बातों में आ गए और अपनी सारी तपस्या को खर्च कर दिए। ये 2000 वर्ष तक जो तपस्या की थी, बोले मैं 2000 वर्ष की तपस्या तुम्हें दान में दे देता हूं, और 2000 वर्ष की तपस्या के बल से राजा त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दिए। कथा आप लोग जानते हैं, ये लोग ये स्वर्ग में भेजे, लेकिन इंद्र इत्यादि देवताओं ने सोचा कि अपने बल पर नहीं दूसरों के बल पर स्वर्ग में आ रहा है, तो यहां से विश्वामित्र ने बल लगाया, ऊपर से देवताओं ने बल लगाया, त्रिशंकु बेचारा लटक गया। तो 2000 वर्ष की तपस्या तो ऐसे ही चली गई, फिर से ये तपस्या में जुड़ गए, फिर से पुष्कर क्षेत्र में जाकर 1000 वर्ष तक तपस्या किए, और उसमें भी एक बहुत लंबी चौड़ी कथा है। महाभारत तो आप जानती है, 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, बहुत विस्तार से कथा है। विश्वामित्र जी का एक भांजा था जिसका नाम था शुनशेप, और विश्वामित्र का शुनशेप विचरण करते करते पुष्कर क्षेत्र में आया और उन्होंने कहा कि मामा जी कृपया करके आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है, मुझे बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपा गया है, आप मेरी रक्षा कीजिए। 1000 वर्ष तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या की, लेकिन अपने भांजे को इस कलंक से मुक्त करने के लिए 1000 वर्ष की तपस्या दे दी, तपसा, बेचारे तपस्या करते ही रह गए। फिर से ये पुष्कर क्षेत्र में तप करने लगे और दिव्य तप किए, 1000 वर्ष तक लगातार तप करते रहे, और उनकी 1000 वर्ष तक तपस्या करने पर 1000 वर्ष के बाद मेनका नाम की एक अप्सरा आई और अप्सरा को देखकर विश्वामित्र जी मोह में फंस गए और जो 1000 वर्ष की तपस्या थी वहां खर्च हो गई। काम क्रोध और लोभ, कितनी भी तपस्या हो, काम क्रोध लोभ उत्पन्न हो जाए तो ये तपस्या का फल नष्ट हो जाता है। फिर उनको ज्ञान आया, बुद्धि आई, तो फिर से ये तपस्या में जुटे। बोले ये पुष्कर में बहुत अप्सराएं आती हैं, पुष्कर क्षेत्र को छोड़ दिया और चले गए हिमालय में, और हिमालय में जाकर महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते 1000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। और जब 1000 वर्ष तक तपस्या हुई तब ब्रह्मा जी फिर से हंस के ऊपर सवार होकर आए और कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें महर्षि पद प्रदान करता हूं। ये प्रसन्न हो गए महर्षि, पहले राजर्षि कहा था, अब आकर कहा आप महर्षि महर्षि बन गए, लेकिन इसको महर्षि नहीं बनना था, इनको ब्रह्मर्षि बनना था। तो बोले अभी भी ब्रह्मा जी मुझे महर्षि कह रहे हैं, अभी पूरा पूरा ब्रह्मर्षि नहीं बना, फिर से तपस्या करने लगे हिमालय में, फिर से 1000 वर्ष तक तपस्या करने लगे। इंद्र को लगा कि ये तपस्या करके मेरा स्वर्ग छीन लेगा, इंद्र ने रंभा नाम की अप्सरा को भेजा और 2000 वर्ष की तपस्या का स्टॉक हो चुका था, लेकिन ये रंभा नाम की अप्सरा आई, काम के ऊपर तो विजय कर लिया था मेनका के समय, लेकिन रंभा के ऊपर क्रोध आ गया और क्रोध आकर 2000 वर्ष की तपस्या थी, क्रोध आया, श्राप दे दिया रंभा को और 2000 वर्ष की तपस्या विफल हो गई। यहां पर और एक सिद्धांत स्थापित होता है भक्तों, भगवान की भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी साधन हैं उनका क्षय हो जाता है, जैसे यहां पर होता जा रहा है। भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है नेहा विक्रमनाशोस्ति, जिसका कभी क्षय नहीं होता। भक्ति एक ऐसी वस्तु है जो देने से बढ़ती है, और तपस्या आदि ये जितनी भी वस्तु है देने से घट जाती है। विचार की कितनी कितनी तपस्या, रंभा को श्राप क्रोध करने पर तपस्या खर्च हो गई, फिर से 1000 वर्ष तक तपस्या करने लगे और अब तो सोचा कि मैं भयंकर तपस्या करूंगा, मात्र अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर भोजन त्याग दिया, सूखे पत्ते, फिर पानी भी त्याग दिया, फिर सांस लेना भी त्याग दिया। और जब भयंकर तपस्या की तो उस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और प्रकट होकर कह दिया कि भाई साहब आप बहुत बड़ी तपस्या कर चुके हो और आज के बाद हम और 33 करोड़ देवी देवता आपको ब्रह्मर्षि नियुक्त करते हैं, आज आप ब्रह्मर्षि बन गए। 33 करोड़ देवी देवताओं ने एक स्वर से कह दिया विश्वामित्र जी आप ब्रह्मर्षि हो गए, और ब्रह्मा जी ने भी कह दिया आप ब्रह्मर्षि हो गए, लेकिन वशिष्ठ जी ने नहीं कहा वशिष्ठ जी ने नहीं कहा कि आप ब्रह्मर्षि हो गए, वशिष्ठ जी तो साधारण ब्राह्मण मानते थे। जी के पास आए, बोले आप मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं मानते हो, बोले आप में ब्रह्मर्षि के गुण नहीं है। विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया, बोले यदि वशिष्ठ जी मुझे ब्रह्मर्षि कह दे तो सारा संसार मुझे ब्रह्मर्षि कह सकता है, क्या करे क्या करे। बहुत मनाया लेकिन वशिष्ठ जी इनको ब्रह्मर्षि कहने को तैयार ही नहीं थे, पहले का झगड़ा भी हो चुका था और बहुत कुछ आगे था। वशिष्ठ जी वास्तव में जानते थे कि इसमें ब्रह्मर्षि के गुण है कहां। तो एक दिन की बात, विश्वामित्र ने सोचा यदि वशिष्ठ जी की मृत्यु हो जाए, मैं इसे मार डालूं तो मेरा सारा काम बन जाए, मेरे मार्ग में एक ही कांटा है वो है वशिष्ठ जी जो मुझे ब्रह्मर्षि नहीं मानते हैं। तो एक दिन ये विश्वामित्र जी हाथ में तलवार लेकर वशिष्ठ जी के घर पर उनके पलंग के नीचे जाकर छिप गए और सोचे कि जैसे ही ये सो जाएंगे मैं उसका गला काट दूंगा। तो विश्वामित्र जी तलवार लेकर आए, उनके पलंग के नीचे जाकर छिप गए और उस समय ही वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति ये दोनों वहां पर बैठे थे और खुला आकाश था, चंद्रमा की चांदनी फैल रही थी। अरुंधति ने कहा पतिदेव कितना सुंदर चंद्रमा है और कितना सुंदर इसका प्रकाश है। और उस समय वशिष्ठ जी के मुख से निकला कि इस चंद्रमा का प्रकाश उसी प्रकार फैल रहा है जैसे बहुत सुंदर विश्वामित्र जी की तपस्या का प्रभाव फैल रहा है। धन्य है अरुंधति, आज इस संसार में विश्वामित्र जैसे तपस्वी इस दुनिया में कोई नहीं है, धन्य है विश्वामित्र जी तपस्या। जब विश्वामित्र ने यह बात सुनी कि मेरी अनुपस्थिति में वशिष्ठ जी मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, अरुंधति ने कहा कि विश्वामित्र जी इतने तपस्वी हैं, इतने प्रभावशाली हैं, तो फिर आप उसको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह रहे हो। तब विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी ने देख लिया थे तलवार लेकर आकर छिपे, वशिष्ठ जी ने कहा देखो मैं तो आज उनको ब्रह्मर्षि कह दूं, लेकिन ब्रह्मर्षि कभी भी हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं रखते। ब्रह्मर्षि का अस्त्र शस्त्र उनका मंत्र होता है, वेद शास्त्र से वो चलते हैं। तो उसी समय वो पलंग से बाहर आए और तलवार बलवार उनके सामने छोड़ दिए, हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी के चरण में दंडवत प्रणाम करते गिर गए। और उसी समय वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि करके उठा लिया और अपने गले से लगा लिया। इस प्रकार बहुत बहुत तपस्या करने के बाद विश्वामित्र जी को ये ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हो गया। तो भक्तों, इस संसार में व्यक्ति का जन्म किसी भी कुल में क्यों न हुआ हो, भक्ति के द्वारा वो महान बन सकता है। हम सबको श्री प्रभुपाद जी की यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नहीं तो विचार कीजिए, विदेशों में पाश्चात्य देश में रहने वालों का क्या गुण था, उनका न तो पूर्व जन्म अच्छा था न वर्तमान जन्म अच्छा था, लेकिन इस जन्म में भक्ति करने के कारण वे बड़े बड़े सन्यासी बन गए और इतने बड़े सन्यासी के लेवल में आ गए कि भारत के लोगों को आज वे लोग दीक्षा दे रहे हैं, है ना। तो भक्ति के द्वारा हमारे प्रभाव को बदला जा सकता है, यही यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। क्षमा कीजिए, समय नहीं लिया और प्रश्न का कोई प्रश्न नहीं है। यदि प्रश्न है तो प्रश्न मिल सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री प्रभुपाद की निदाय गौर प्रेमानंद की।